ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एक निजी मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम आकांक्षी भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे परिवर्तनकारी बदलाव लाया जा सकता है। कोविड 19 वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन और युद्ध जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्थितियां भी भारत को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के सिर्फ 125 दिन में 9 लाख करोड़ रुपए की लागत की ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई और 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई। श्री मोदी ने कहा कि इन 125 दिनों के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 700 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस के लिए रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी समूह के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। कजान में आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS के अध्यक्ष प्रोफेसर तान एंग चे के साथ चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि ये चर्चा दोनों शैक्षणिक संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अवसरों के प्रयोग और शिक्षा तथा अनुसंधान से जुड़े सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि ये संस्था विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच रक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए आज संयुक्त अरब अमीरात की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात नौसैनिक बलों के कमांडर रियर एडमिरल पायलट सईद बिन हमदान अल नहयान और वहां के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को सशक्त बनाना तथा सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। जनता दल यूनाइटेड ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे जबकि राजा पितर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। एनडीए के सीट बंटवारे के तहत जेडीयू को 2 सीटें दी गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह, वित्त, सीआईडी, योजना और आबकारी सहित 12 विभागों की जिम्मेदारी है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को बिजली और परिवहन सहित 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जबकि श्री विपुल गोयल को शहरी निकाय, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को आज श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल दोपहर बाद 2 बजे से विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इनमें से 51 पहली बार निर्वाचित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गांधरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में आतंकियों ने एक कश्मीरी डॉक्टर और निर्माण कार्य में लगे 6 मजदूरों की हत्या कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उपराज्यपाल मनु सिन्हा ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको के ट्लाक्सकाला में भारत की दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल में चीन की ली जियामन से हार का सामना करना पड़ा। दीपिका ने सेमीफाइनल में मेजबान मैक्सिको की अलहंद्रा वेलेंसिया को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।